Namo Buddhaya. Jai Bhim. So now I have to face my public examination.
तो अब लोगों के सामने मेरी जो परीक्षा होने वाली है उसका मुझे सामना करना है.
Maitreya has got a collection of questions.
तो मैत्रीवीर के पास बहुत से सवाल हैं.
And he'll be the question master.
तो वो सवालों के आज के मास्टर होने वाले.
He'll be Amitabh Bachchan. कौन करोड़पति
बनेगा?
बनेगा.
कौन बनेगा करोड़पति के मास्टर? पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज इन इंडिया और इन वर्ल्ड विच इनहिबिट्स स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड व्हाट टॉक अवर रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इंडिया और वर्ल्ड. तो पूछ रहे कि दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार या प्रचार करने के लिए भारत में या अन्य देशों में तकलीफें क्या है, और अगर तकलीफें हैं तो उसमें हमारा रोल क्या है, हमारी भूमिका क्या होगी?
So what was the last part? I didn't get that quite.
What are the difficulties and what should be your role? What is your role?
Our role means
in spreading Buddhism in India.
Our means us as individuals.
Our means Buddhist.
Okay. So what are the difficulties facing us in the spread of Buddhism in the world?
तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या मुश्किलें जो हमारे सामने आ रही हैं?
Well, I suppose you could say the world is our main difficulty.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया ही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है?
Habit.
हमारी आदतें.
Craving.
तृष्णा.
Those are our main obstacles.
तो ये हमारी बड़ी मुश्किलात हैं.
But of course, we face more specific difficulties.
लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक या ठोस ऐसी कुछ मुश्किलें हमारे सामने आती हैं.
And there are so many of those, it's difficult to know where to begin.
और वो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें हैं और मुश्किल है कहाँ से शुरू करूँ ऐसे.
Of course, in India, you face particular difficulties which we're very aware of at the moment.
तो भारत में कुछ विशिष्ट मुश्किलें आती हैं जिसके बारे में आप सभी अभी जानते हैं.
And I think we can look at what Dr. Babasaheb Ambedkar had to say about revolution and counter-revolution.
तो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब को क्रांति और प्रतिक्रांति के बारे में क्या कहना है.
The Buddha and Samrat Ashok launched a huge revolution in Indian society.
तो बुद्ध और सम्राट अशोक ने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर वो आए थे.
And that succeeded for several hundred years.
और कई हजार साल तक वो चलती रही थी.
But various forces, which we're all very aware of, turned the clock back.
लेकिन बहुत सारी ऐसी ताकतें जो इस बारे में जानते थे उन्होंने उस घड़ी की सुइयां उल्टी घुमा दी.
And those forces are still there.
और वो जो ताकतें हैं अभी भी कार्यरत हैं.
But that said, I think we must also look at opportunities.
लेकिन इसे देखते हुए जो हमारे सामने संधियां हैं उसकी और भी हमें देखना चाहिए.
Dr. Ambedkar, when he converted, was quite confident that many intelligent, educated Indians from all classes and backgrounds in India would see the sense of the Buddha Dhamma.
तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मांतर किया था तो उन्हें ऐसा लगा था कि बहुत सारे शिक्षित लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से स्तरों से आएंगे वो ये जानेंगे कि इसका महत्व क्या है.
And I think we must still hold that hope.
और मुझे लगता है कि उस आशा को हमने अभी भी थाम कर रखना चाहिए.
As India develops, as a middle class develops in India, more and more people will think of things in a more scientific, more rational way.
तो जैसे जैसे भारत का विकास होगा, भारत के मध्यम वर्ग का विकास होगा, तो बहुत सारे लोग जो है तार्किक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने लगेंगे.
But I know of no other religion that is able to encompass that.
और मैं ऐसे किसी अन्य धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ कि जिसकी व्यापकता में ये सारी बातें आती हैं.
So yes, there are many difficulties in modern India.
तो आधुनिक भारत में हाँ बहुत सी मुश्किलें हैं.
But there's also many opportunities, and let's not forget that.
बहुत सारी हमारे सामने संधियां भी है, अवसर भी है, जिसके बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए.
And our duty as Buddhists is simply to share the Dhamma as clearly and reasonably as we can.
और एक बौद्ध के नाते हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जितना मतलब स्पष्टता से और जितना तर्क के आधार पे हम बौद्ध धर्म को दूसरों लोगों के साथ बांट सकते हैं बांटना चाहिए.
The work we've begun with these excellence retreats shows us that there's plenty of response.
तो ये जो excellence retreat के माध्यम से हमने काम शुरू किया है ये बताता है कि हमें बहुत इसका प्रतिसाद मिल रहा है.
There are people from many different backgrounds, even here.
तो यहाँ पर भी अलग अलग पार्श्वभूमि से आए हुए कई लोग हैं.
And the Dhamma is just about your experience.
और धम्म जो है वो केवल आप ही के अनुभवों के बारे में है.
It's not the property of one community or another community.
तो किसी एक समाज का या दूसरे समाज का धम्म पे अधिकार नहीं है.
It's for us as human beings.
तो एक मनुष्य के तौर पे ये हमारे लिए है.
So I think we as Buddhists, we are convinced Buddhists, especially we who are followers of Dr. Babasaheb Ambedkar, need to take this very seriously indeed.
तो हम जो मतलब बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं और हम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए.
We need to reach those people who are reachable.
तो हमें उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं.
And personally, I believe that there's crores of them in India.
और मुझे लगता है कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं.
But we need to work vigorously to connect with them.
लेकिन हमें बहुत ही क्रियाशील होकर कार्य करना पड़ेगा उन तक पहुंचने के.
Without any idea of what community they come from, what background they come from.
तो वो किस समाज से आते हैं, वो किन उनकी पार्श्वभूमि क्या है, ये सब दिमाग से बाहर निकाल कर हमें वहां तक पहुंचना है.
We need to go beyond that and reach to people of goodwill, of sound intelligence, with this very simple, very direct, experiential message of the Dhamma.
तो हमें इन सब बात पार्श्वभूमि वगैरह दिमाग से निकाल कर हमें उन लोगों तक पहुंचना है और धम्म की ये जो अभिव्यक्ति है उन तक पहुंचानी है.
Of course, in the world as a whole, we face many problems.
तो एक दुनिया को पूरा एकट्ठा लिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं.
We face fundamentalism of various religious kinds all over the world.
तो दुनिया भर में जो अलग अलग तरह के धर्म हैं, उनकी जो मूलभूत मतलब शिक्षाएं हैं, मतलब ठोस है, बदली नहीं जा सकती, ऐसा जो मानते हैं उसका हम सामना करते हैं.
You're well aware of that in India.
तो इसके बारे में आप भारत में भी जानते हैं.
We're well aware of that in many countries in Arabia and Africa.
तो अरेबिया और अफ्रीका के ऐसे देशों में भी हम इसके बारे में जानते हैं.
In America, the forms of Christian fundamentalism, which are quite influential.
तो अमेरिका में मतलब क्रिश्चियन एक तरह का धर्म है जो बहुत ही वहाँ पे प्रभावी है.
That was where people they take on their religion not as a practice to be followed, but as a flag to wave.
तो जहाँ पे वो धर्म को इस तरह से नहीं देखते कि ये कोई आचरण करने वाली चीज है, बल्कि वो धर्म का मतलब झंडा बनाते और उसके नीचे वो रहते.
And that's one of the biggest dangers in the world today, that all these different flags are waved.
तो आज की दुनिया में ये बहुत बड़ा खतरा है कि ऐसे अलग अलग तरह के झंडे जो है वो लहरा रहे हैं.
And sooner or later, those flag poles will be used to hit each other on the head.
और आज नहीं तो कल इन्हीं झंडों के जो डंडे हैं वो एक दूसरे को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे.
And there's a warning for us Buddhists.
और हमारे बौद्धों के लिए ये एक मतलब सूचना है जागरूक होने के लिए.
Because there's a form of Buddhist fundamentalism too.
क्योंकि बौद्ध फंडामेंटलिज्म का भी एक स्वरूप अस्तित्व में है.
You see what's happening in Myanmar and even in Sri Lanka, forms of Buddhist fundamentalism.
तो म्यांमार या श्रीलंका में जो आप देख रहे हैं वो भी एक बौद्ध फंडामेंटलिज्म का एक स्वरूप है.
Even you get a sort of Buddhist fundamentalism in Maharashtra.
तो महाराष्ट्र में भी एक तरह का बौद्ध फंडामेंटलिज्म है.
So fundamentalism I define is where you just hold on to the religion as something to identify yourself with.
तो फंडामेंटलिज्म वो होता है कि जहाँ पे धर्म को आप ऐसी किसी चीज करके मतलब पकड़ के रखते हैं कि आप अपना संबंध उसके आधार पर बताते हैं.
I'm a Buddhist, you're a
Buddhist. तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैं बौद्ध हूँ और तुम ये वो सब हो.
Oh, well, you're अपने लोग.
अपने लोग जो हम कहते हैं वो.
It's this group mentality that is the main danger in our modern world.
तो ये जो समूह की मानसिकता है ये हमारी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है.
In England, we don't like the French.
तो हमारे देश में हम फ्रेंच लोगों को पसंद नहीं करते.
Even though they just live 50 miles away from us.
तो वो हमारे से सिर्फ 50 मील दूर ही रहते हैं, फिर भी हम उन्हें पसंद नहीं करते.
The Scottish people don't like the English.
और जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उन्हें इंग्लैंड के लोग पसंद नहीं
है. The Irish, of course, definitely don't like the English.
और आयरिश के लोग जो हैं वो इंग्लैंड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते.
I'm a nice mixture because I've got both Irish and Scottish blood and I was born in England.
तो मैं पूरे लोगों का मिक्सचर हूँ. मेरे में स्कॉटिश खून है, आयरिश खून है और मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ था.
So I'm at war somewhere inside myself.
तो मेरे अंदर में एक द्वंद्वसा कभी कभी चलते रहता है.
But yes, this is the characteristic of the world. Everybody identifies with their own group.
लेकिन दुनिया का एक गुण ही है कि वो अपने आप को किसी समूह के साथ अपनी मतलब पहचान बनाना चाहता है.
And we just need to identify ourselves as human beings.
लेकिन हमें अपने आप को सिर्फ एक मनुष्य के तौर पर पहचानना आना चाहिए.
I'm a human being before I'm a Buddhist.
बौद्ध होने से भी पहले मैं एक मनुष्य हूँ.
In fact, I'm a Buddhist because I believe that's the best way for me to be a human being.
तो मैं बौद्ध इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मनुष्य अच्छा मनुष्य होने के लिए मेरे लिए सबसे बेहतर मार्ग है.
But so many religions, you're a member of that religion before you're a human being.
लेकिन बहुत से धर्मों में मनुष्य होने के पहले भी व्यक्ति उस धर्म का या उस समूह का एक व्यक्ति होता है.
So people are prepared even to kill in the name of religion.
और इसलिए धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं.
Like Christianity is supposed to be the religion of love.
जैसे क्रिश्चियन धर्म तो प्रेम का संदेश देने वाला धर्म माना जाता है.
But like every other religion, so many thousands, millions of people were killed in the name of love.
लेकिन इस प्यार के नाम पे ही दूसरे अन्य कई धर्मों के जैसे ही कई लोगों को मारा काटा गया है.
So I think that we Buddhists must be very careful we don't fall into the same fundamentalist trap.
तो इस तरह के फंडामेंटलिज्म के जाले में हमने नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए बौद्ध लोगों ने बहुत सावधान रहना चाहिए.
Being a Buddhist means being a real, a true human being.
तो बौद्ध होने का अर्थ होता है कि एक सच्चा और सही मायने में एक इंसान बनना.
It means leaving behind all these group identities.
तो ये जो समूह की सारी पहचानें हैं उनको सबको परे रख देना.
I'm a human being before I'm an Englishman.
तो एक अंग्रेज होने के भी पहले मैं एक मनुष्य हूँ.
That's why we can understand each other.
और इसी वजह से शायद हम एक दूसरे को समझ पाते हैं.
And so we must hold firmly to that.
और इसीलिए उसी के साथ हमने अपना पक्का संबंध रखना चाहिए.
So I think the strongest enemy that we have in the world today, that the whole world faces, is this group identity, nationalism. Fundamentalism of a religious kind, all sorts of fundamentalism.
तो सारी दुनिया में जो हम सबसे बड़ी मुश्किल पाते हैं वो एक इस तरह का फंडामेंटलिज्म है, एक समूह के साथ पहचान बनाना या राष्ट्रीयता है, इस तरह की बातें हमारी दुश्मन हैं.
Obviously, I'm a British citizen. I've got a British passport.
अब निश्चित ही मैं एक ब्रिटिश नागरिक हूँ, मेरे पास वहाँ का पासपोर्ट है.
But really, I'm just a citizen of the world before I'm a citizen of Britain.
लेकिन उससे भी पहले ब्रिटेन का नागरिक होने से भी पहले मैं विश्व का नागरिक हूँ.
So I think this the world is in a very dangerous state.
तो मुझे ऐसे लगता है कि आज दुनिया जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ पे है.
Because all this tension that has always been is backed by the destructive power of modern weapons.
तो ये जो ताकतें सभी कार्यरत रहती है, ये आधुनिकता की जो है नष्ट करने वाली जो ताकतें हैं वो इनके पीछे खड़ी रहती है.
And so it's more dangerous than it's ever been.
तो इसलिए ये पहले जितनी खतरनाक नहीं थी उससे कई ज्यादा खतरनाक आज है.
The forces are just the same, but they're more dangerous.
तो ताकतें तो वही सब पुरानी है लेकिन वो कई ज्यादा खतरनाक हो चुकी है.
So we as Buddhists need to cut through that. We need to reach people as human beings.
तो एक बौद्ध होने के नाते हमें इन सब ताकतों से गुजर कर भी लोगों तक पहुंचना है.
And I certainly myself believe that there are many people of genuine goodwill who will hear the Dhamma if it's presented to them in a reasonable and open way.
तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ऐसे बहुत सारे बौद्ध लोग हैं कि जिनको अगर मतलब अच्छे से बौद्ध धर्म स्पष्ट करके अगर समझाया जाए या बताया जाए तो वो बौद्ध धर्म को सुनेंगे.
So I believe our main responsibility is to communicate the Dhamma as widely as possible.
तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जितना अधिक हो सके उतना हम धम्म को फैलाएं.
Not just within our own community or whatever.
तो ना सिर्फ हमारी अपने मतलब समूह में लेकिन और जगह भी.
Otherwise what happens, we're just talking to people like us.
नहीं तो होता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने जैसे ही लोगों के साथ बात करते रहते हैं.
But we need to reach out to people from all sections of society.
लेकिन समाज के सभी क्षेत्रों में से जो लोग आते हैं उन तक हमें पहुंचना है.
And we need to reach out beyond the heartland of Buddhism in India, which is Maharashtra at the moment.
तो बौद्ध धर्म का जो हृदय या केंद्र स्थान है इस वक्त जो कि महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र से भी बाहर हमें जाना है.
I'm very glad there are people from other states here today.
तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ अन्य राज्यों से भी आज यहाँ पर लोग हैं.
I know there's some people from Tamil Nadu, there's some from Delhi.
तो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ तमिलनाडु से हैं, कुछ दिल्ली से हैं,
बिहार
से हैं,
maybe others too.
और दूसरे भी लोग हैं.
अरुणाचल प्रदेश, Manipur. Wonderful. Huh? Not just old Maharashtra.
तो सिर्फ पुराने महाराष्ट्र के लोग नहीं है.
Of course, don't get me wrong, I like Maharashtra.
तो मुझे गलत मत समझिए, मुझे महाराष्ट्र पसंद है.
I like Puranpuri, I like Methi and so on.
तो मुझे पुरनपोड़ी पसंद है, मेथी पसंद है.
But roti is good too.
लेकिन रोटी भी अच्छी है.
Misty roti is very nice.
और मिस्टी रोटी तो बहुत सुंदर है.
And masala dosa is wonderful.
मसाला डोसा भी अच्छा है.
So let's spread out.
तो मतलब हमने फैलना चाहिए.
So that I think is our chief responsibility.
और मुझे लगता है ये हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है.
I've never been anywhere in India where there are not people who do not want to hear the Dhamma.
तो मैं भारत में ऐसे किसी भी जगह पे कहीं भी गया ऐसे मुझे याद नहीं कि जहाँ ऐसे लोग हो जो धम्म को नहीं सुनना चाहते.
Anywhere you go, you will find people who are interested in the Dhamma.
तो आप कहीं भी जाए आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो धम्म में रुचि रखते हैं.
So give it to them.
तो इसलिए उन्हें वो बांटिए, उन्हें
whatever you know, offer.
तो आप जो भी जानते हैं आप उन्हें दीजिए.
So I think we need to work together to communicate the Dhamma throughout India.
तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबने एक साथ काम करना है ताकि भारत में हम धम्म को पहुंचाएं.
That of course needs so much work.
और इसलिए बहुत सारा कार्य होने की जरूरत है.
उत्तरांचल it needs so much work to spread the Dhamma.
तो बहुत धम्म को फैलाने के लिए बहुत सारा कार्य होने की आवश्यकता है.
But it mainly needs us to practice the Dhamma.
लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम स्वयं धम्म का आचरण करें.
So what we take to people is our own experience of the Dhamma.
क्योंकि लोगों तक जो हम लेकर जाते हैं वो धम्म का हमारा अपना अनुभव होता है.
Not just the theory of the Dhamma, but the practice of it.
तो हम सिर्फ धम्म का तत्व लेकर नहीं जाते तो धम्म का हम आचरण लेकर जाते हैं.
So that's at least some answer to that. I no doubt could say much more about the obstacles. There are so many.
तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा उसका जवाब हो. बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं लेकिन ये उनमें से थोड़ी है.
I think in India today there's a unique opportunity.
मुझे ऐसे लगता है कि भारत में एक बहुत ही अलग तरह की आपके पास अवसर है.
There's an ideological vacuum.
क्योंकि भारत में एक आदर्श नहीं होने की एक मतलब ऐसे रिक्त ऐसा स्थान है.
I'm not going to talk politics.
तो मैं राजनीति के बारे में कुछ बोलने वाला नहीं हूँ.
But you can see with the collapse of one ideology and the rise of another, there's an empty space.
तो आप देखते हैं कि किन्हीं आदर्शों का रास होता है और दूसरे आदर्श ऐसे निर्माण होते हैं और एक तरह की यहाँ पे खालीपन है, शून्यता है.
Of course, this is an empty space that Baba Sahib tried to fill.
तो ये वो रिक्त स्थान है जो बाबा साहब ने भरने की कोशिश की थी.
So we need to do much more work to promote the Buddha Dhamma as the basis for this new perspective.
तो इस दृष्टिकोण से मतलब बौद्ध धर्म हम एक पर्यायी रूप में पेश कर सकते हैं.
There needs to be a middle way between fundamentalism on the one hand and let's say a sort of loose weak socialism on the other.
तो एक फंडामेंटलिज्म एक स्थान पर है और एक जो ढीला ढाला पड़ चुका समाजवाद जो एक तरह है उन दोनों का एक मध्यम मार्ग हमें खोजना है.
And the Buddha Dhamma provides the basis for that.
और ऐसा करने के लिए बुद्ध धर्म हमें आधार प्रदान करता है.
A real vision of what a human being is and what a decent human society is.
तो एक सही मनुष्य क्या होता है या सही मनुष्य का एक समाज क्या होता है इसका वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है.
And Dr. Babasaheb Ambedkar gave such eloquent expression to that vision.
और इस दृष्टि का बाबा साहब ने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छी तरह से अभिव्यक्त भी किया.
But we've hardly begun to express it.
लेकिन उसे अभिव्यक्त अभी हमने करना अभी शुरू किया है.
So yes, I think our main responsibility is to really practice the Dhamma and to preach it to others.
तो हमारी प्रमुख जिम्मेदारी ये है कि स्वयं धम्म का हम आचरण करें और उसे अन्य लोगों तक पहुंचाएं.
If you can't preach yourself, well, support those who can.
तो आप स्वयं अगर वो नहीं सिखा सकते तो उन लोगों की सहायता करें जो सिखा सकते या कर सकते हैं ऐसा.
Rupees are as necessary as books.
तो जैसे किताबों की आवश्यकता होती है वैसे पैसों की भी आवश्यकता होती है.
If I had a crore of rupees, if I become a crorepati, I could do so much.
तो अगर मैं करोड़पति होता या मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मैं बहुत कुछ कर सकता था.
The dhamma needs a lot of support, a lot of work of all kinds.
तो धम्म को हर तरह के आधार की या मदद की सहायता की जरूरत होती है.
Anyway, I better stop because I think there are lots of questions.
तो मैंने रुकना चाहिए क्योंकि बहुत सारे और भी सवाल हैं.
Yeah, actually, when we communicate within our community, it is easy to explain, to communicate our thoughts. But if I am explaining it to some Hindu, then it starts with a comparison sort of thing and then it goes in a debate. So isn't that difficult? And then the second part of the question is, like, Buddhism is seen as a religion by many, but it is also seen as a philosophy by many. So if we present it as a philosophy, will it be easy for others to accept?
हिंदी में
वो कह रहे हैं कि अगर हम मतलब जब अपने समाज के साथ बौद्ध धर्म को बांटते हैं तो उसे बांटना बहुत आसान होता है, लेकिन जब किसी हम अन्य धर्मीय के साथ बौद्ध धर्म की बातें बांटना चाहते तो एक वहां पर तुलना शुरू हो जाती है, वो अपने धर्म के साथ बौद्ध धर्म की तुलना करना शुरू कर देता है. और कई लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को धर्म के स्वरूप में ना देखते हुए एक तत्वज्ञान के स्वरूप में देखते हैं, तो अगर उन तक तत्वज्ञान के स्वरूप में अगर बौद्ध धर्म को पहुंचाया जाए तो क्या उसे पहुंचाना आसान होगा?
I would say that the way to communicate the Dhamma to people from different backgrounds is initially to avoid the whole issue of religion.
तो मुझे लगता है कि धर्म को अगर किसी के भी पास पहुंचाना है तो सबसे पहले आपको धर्म को मतलब पूरी तरह से एक तरह से बाजू रख देना चाहिए.
Because the Buddha Dhamma is to do with your human experience.
क्योंकि बौद्ध धर्म का जो संबंध है आपके मनुष्य के तौर पे अनुभव से है.
It shows you how to discover in your own experience the truth.
तो आपको वो ये बताता है कि आपके स्वयं के अनुभव के भीतर आपको सत्य को किस तरह से खोजना है.
And I know that in India today there are many people interested, for instance, in mindfulness.
और मुझे पता है कि आज भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनको जागृति में सजगता में बहुत रुचि है.
There are many people interested in Buddhist meditation.
तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बौद्ध ध्यान में रुचि है.
So I think we can approach especially through those media.
तो मुझे ऐसा लगता है कि इन माध्यमों के द्वारा हम उन तक पहुंच सकते हैं.
And yes, I think avoid the question of whether it's a religion or a philosophy.
और मुझे लगता है कि ये धर्म है या तत्वज्ञान है, इस सवाल को हम पूरी तरह से टाल सकते हैं.
Actually, I don't think it's either.
और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों भी नहीं है.
It's something that is completely different from both religion, which requires merely belief, and philosophy, which is all constructed with the intellect.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक तरह से धर्म भी नहीं है जिसमें पूरी तरह श्रद्धा का होना आवश्यकता है, और ये तत्वज्ञान भी नहीं है जो संकल्पनाओं का बना हुआ होता है.
It's something quite different, so it's difficult to know how to classify it.
तो ये बहुत ही अलग है धर्म, और मुझे नहीं पता कि इसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाए.
But the answer is you need to find out what works.
लेकिन इसका जवाब ये हो सकता है कि आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या आपकी सहायता कर सकता है.
If you want to sell a new soap powder, you have to find its unique selling features and what people want.
तो अगर आपको एक नया सा कपड़े धोने का पाउडर बेचना है तो आपको ये खोजना पड़ता है कि इस पाउडर में अलग बात ऐसी क्या है और वो क्या है जो लोग चाहते हैं.
There's no point in selling people a soap powder when they don't want what you're telling them it does.
तो कोई आपका साबुन का पाउडर सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहेगा क्योंकि आपको उसको बता रहे कि ये क्या कर सकता है.
You need to find out where their interest lies.
तो आपको वो ढूंढना पड़ता है कि उनकी रुचि कहाँ पर है.
Because the Buddha Dhamma is about our human experience.
क्योंकि बौद्ध धर्म जो है हमारे मानवीय अनुभवों के विषय में है.
So where does their human experience reach out to the Buddha Dhamma?
तो उनका जो मानवीय अनुभव है वो बौद्ध धर्म के साथ कहाँ जुड़ पाता है?
So, for instance, I know there are quite a number of doctors here.
तो उदाहरण के तौर पे मुझे पता है कि यहाँ कई सारे डॉक्टर्स हैं.
Many people suffer from stress.
तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तनाव से ग्रस्त हैं.
You know, in your surgery, that many people coming from the door, what they're coming through the door, their basic complaint is stress.
तो आपको पता है कि आपके पास जो बहुत सारे लोग आते हैं उनका जो मुख्य एक कारण है आने का वो है कि वो तनाव से ग्रस्त हैं।
Well, that's something we've got something to say about.
तो वो एक बात है जिसके विषय में कहने के लिए हमारे पास कुछ है।
We can help them to deal with that on the basis of the Dhamma.
और धम्म की सहायता से तनाव के साथ क्या करना चाहिए ये समझने के लिए हम उन्हें मदद कर सकते हैं।
I could go on, but I think I've given you enough to be thinking about.
तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन आपको सोचने के लिए पर्याप्त मैं दे चुका हूँ ऐसा मुझे लगता है।
See where the need is felt and then find the way in which the Dhamma can connect with that need.
तो उनकी जरूरत क्या है ये देखिए और ऐसे राह ढूंढिए कि कहाँ बौद्ध धर्म उस जरूरत के साथ संबंध बना सकता है।
But hastening on.
ये जो सवाल यहाँ पूछा गया है कि अन्य जातियों के वातावरण में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार कैसे करें शायद उसका जवाब भी इस सवाल से हो गया है। तो मैं उस सवाल को वापस नहीं पूछूंगा जिसने भी पूछा उनको बुरा ना लगे।
The question already.
Yeah.
How does the Buddha reflect where it is, where there are no conditions? But society is responsible for the oppression of certain caste of people in the society. So how does, let's say, Dalit will overcome those conditions?
I'm still not really sure what you're asking.
Like, Buddha is unconditionally, he has no conditions. How does Buddha reflect where there is not conditions?
So how does the Buddha reflect? In what sense reflect?
Because his mind is unconditioned, that's what I think question is aspiring.
Oh.
Or let's say society gives the condition of caste and then so how Buddha will reflect? Because oppression, the conditions for oppression is come from the society.
I'm sorry, I really can't quite get hold of the nature of the question, but maybe put it in Hindi and I'll talk a little bit about it. Yeah.
तो समाज में यानी जो समाज जो है वह जातिवादी की संस्कारता देता है तो कैसे दलित जो है उसके ऊपर ओवरकम करेंगे।
Well, I suppose the point is that mental conditionings that we all experience hold us back.
तो मुझे लगता है सवाल इस विषय में है कि वो सारी मानसिक संस्कारिताएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं।
And it's not just that the conditions of being a Dalit or being this or that.
तो ये सिर्फ वह संस्कारिताएं नहीं है कि आप दलित हैं या ये हैं या वो हैं।
There's conditioning to being an Englishman, for instance.
तो ऐसी भी एक संस्कारिता है कि एक अंग्रेज व्यक्ति हूँ मैं।
So one needs to become aware of that conditioning.
तो सबसे पहले तो हमें जागरूक होना पड़ता है कि ये संस्कारिता है।
And become aware of it as conditioning.
और ये संस्कारिता है इसी तरह से हमें उसके विषय में जागरूक होना
And
होता
then you
है।
can change it.
और फिर तब हम उसे बदल सकते हैं।
You can change it through your dhamma practice.
आप अपने धम्म के आचरण के द्वारा उसे बदल सकते हैं।
Whatever conditions you face, well, you can overcome them.
तो जो भी संस्कारिताएं आपके आगे आती हैं आप उनका सामना करते हैं आप मतलब आप उनका सामना कर सकते हैं।
It's quite simple.
और ये बहुत ही आसान है।
It may be difficult to do, but you can do it.
ये करने के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है पर आप कर सकते हैं।
You know, I'll give you an example from my own experience.
तो मैं अपने ही एक अनुभव से आपको एक उदाहरण देता हूँ।
Being an Englishman of the particular sort of social background that I came from, one finds it difficult to express emotion.
तो एक जो विशिष्ट सामाजिक पार्श्वभूमि से मैं आता हूँ तो मेरे लिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है।
You must have noticed that with English people, they're a bit cold.
तो आपने अंग्रेज लोगों का अगर अनुभव लिया हो तो आपने इस ओर ध्यान दिया होगा कि वो बहुत ठंडे होते हैं।
And very cool, of a certain class anyway.
तो एक विशिष्ट मतलब समाज के लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ठंडे होते हैं मतलब।
That was certainly my conditioning.
और मेरी भी यही संस्कारिता थी।
It's very difficult to express emotion.
तो भावनाओं की अभिव्यक्ति मेरे लिए बहुत मुश्किल थी।
Well, I hope I'm not like that so much now.
लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं उस तरह से नहीं हूँ।
I've worked on my emotions, huh?
मैंने अपनी भावनाओं पे बहुत कार्य किया।
I've tried to develop maitri.
मैंने मैत्री का विकास करने का प्रयास किया।
I've tried to develop human communication.
और मनुष्यों से संपर्क करने का भी मैंने विकास किया है.
So I tried to overcome that social conditioning that I inherited.
तो मेरे ऊपर जो एक सामाजिक संस्कारितता का प्रभाव था उसके उससे लड़ने का मैंने प्रयास किया.
So we can all do that.
और हम सब ये कर सकते हैं.
There are two related questions. ईश्वर और आत्मा नहीं है तो फिर एखादा व्यक्ति अगर गरीब पैदा होता है और कोई अमीर पैदा होता है और कोई विकलांग पैदा होता है ऐसा क्यों? If there is no God and there is no Atma, so why some people are poor, why some people are handicapped? And why some people are rich?
Huh?
Kuch problem hai?
Sorry, I'm not hearing properly. Because.
आप शांत रहिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आपने दिया ये सवाल मेरा सवाल नहीं तो if there is no God, if there is no Atman, so why some people are rich? Why some people are poor? And why some people are handicapped? Why they are born like that?
Well. Why does it rain one day and not the next?
तो ऐसा क्यों होता है कि एक दिन बारिश आती है और दूसरे दिन बारिश नहीं आती?
Why did the monsoon come late?
तो बारिश देर से क्यों आती है बारिश का मौसम?
Got nothing to do with God or Atman.
तो आत्मा या ईश्वर से इसका कुछ लेना देना नहीं है.
There are all sorts of conditions in the world, huh?
तो दुनिया में अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ होती हैं.
Why are people crippled, born crippled, for instance?
तो उदाहरण के तौर पे कुछ लोग अपाहिज क्यों पैदा होते हैं?
Well, there are enough doctors in the room to give an answer to that.
यहाँ इस रूम में इतने पर्याप्त डॉक्टर हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं.
There's all sorts of genetic factors, there's diseases and so on.
तो मतलब अनुवांशिक बातें होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं.
And then, of course, there's social conditions.
और सामाजिक परिस्थितियाँ भी होती.
There's all sorts of political and social forces that create hierarchy and create poverty and wealth.
तो बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक ऐसी ताकतें होती हैं जो गरीबी का निर्माण करती है और अन्य ऐसी बातों का निर्माण करती है.
But these are nothing to do with. You don't require the idea of a god or an atman to explain these.
लेकिन इन सब बातों का जवाब देने के लिए जरूरी नहीं कि आपको ईश्वर या आत्मा ऐसी बातों की सहायता लेनी पड़े.
Everything arises in dependence on conditions.
तो हर एक बात जो है वो परिस्थिति के आधार पर निर्माण होती है.
If we want to explain any given phenomenon. We just have to look at the conditions that produced it.
तो किसी भी बात का अगर हमें स्पष्टीकरण चाहिए तो किन चीजों ने उनका निर्माण किया है उसकी ओर हमें देखना होता है.
I think that's a much better way of explaining things than explaining it in terms of a god or an atman.
तो इस तरह से अगर हम चीजों का स्पष्टीकरण दे तो ईश्वर या अन्य बातों की सहायता से इसका स्पष्टीकरण देने से वो कहीं ज्यादा अच्छा होगा.
And of course, where you come to poverty, well, one has to study the nature of. Of politics and society.
और अगर आपको गरीबी का उत्तर चाहिए तो उस देश की राजनीति क्या है सामाजिक परिवेश क्या है इत्यादि बातों को आपको देखना होगा.
You can see how it works.
और आपको देखना पड़ेगा ये सब व्यवस्थाएं किस तरह से कार्यरत हैं.
And we have to try to create a society which is just and equal.
और हमें फिर ऐसे समाज की निर्माण करनी पड़ेगी जिसमें समानता है जिसमें न्याय है.
And again, it's a question of what conditions will give rise to that.
और फिर वापस ये एक और बार सवाल होता है कि वो कौन सी परिस्थितियां है जो इस बात को निर्मित करेगी.
When you say Atma is just an idea, why not Buddha is just an idea? तो हम कहते हैं कि आत्मा केवल एक संकल्पना है तो क्यों नहीं बुद्ध भी एक संकल्पना है?
Well, in a way, perhaps for you, he is just an idea.
तो शायद आपके लिए वो केवल एक कल्पना मात्र हो सकते हैं.
But when you study his teachings, then you begin to sense a real intelligence behind them.
लेकिन जब आप उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं तो उसके पीछे का क्या क्या बात है मतलब वो आप समझना शुरू करते हैं.
Well, for instance, Shivaji.
तो उदाहरण के तौर पे शिवाजी.
Is Shivaji just an idea?
क्या शिवाजी केवल एक कल्पना है?
No, we've got lots of evidence for his life. We've got physical evidence. We've got written evidence. We've got historical evidence.
तो नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे प्रमाण हैं, मतलब भौतिक प्रमाण हैं, लिखे हुए प्रमाण हैं, और बहुत सारे प्रमाण हैं साबित करने
के लिए. So we've got plenty of evidence for the life of the person that we call the Buddha.
तो बुद्ध ऐसे एक व्यक्ति थे, ऐसा साबित करने के लिए भी हमारे पास कई सारे प्रमाण हैं.
And then when you read his teachings, when you practice his teachings, well, you realize that these teachings are true.
और जब आप उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, उनके ऊपर आचरण करना आरंभ करते हैं, तो आपको ये महसूस भी होता है कि इन शिक्षाओं में सत्य है.
So it's quite easy then to see that those teachings proceed from somebody who really understood.
तो फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये शिक्षाएं वास्तव में ऐसे किसी व्यक्ति से आई हुई है जिसने स्वयं इसे जाना था.
So you see what I mean? We can have a real experience of the Buddha, albeit at a distance.
तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम बुद्ध का वास्तव में एक अनुभव ले सकते हैं, भले ही वो हमसे कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो.
But there's another approach we can take to the question.
लेकिन इस प्रश्न को हम और एक तरह से भी ले सकते हैं.
The Buddha, we don't claim, exists outside history.
तो हम ऐसा नहीं कहते कि बुद्ध इतिहास के बाहर कहीं अस्तित्व में थे.
We say that the Buddha arose within history.
तो हम ये कहते हैं कि बुद्ध की जो निर्मिति है वो इतिहास के भीतर ही हुई है.
So we can have some experience of him in the way that I've mentioned.
तो इसलिए जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है उस तरह से भी हम उनका अनुभव ले सकते
हैं. God exists right outside history.
लेकिन ईश्वर का जो निर्माण है वो इतिहास के बाहर कहीं हुआ है.
So we've no way of having an experience of him.
और इसलिए हमारे पास कोई भी माध्यम नहीं है कि हम उसका अनुभव ले सके.
So it's quite different conception.
तो वो काफी अलग ही तरह की एक संकल्पना है.
We confound our understanding of the Buddha in actual experience.
तो बुद्ध के बारे में जो हमारी समझ है वो हम अपने अनुभव के भीतर ही निर्मित कर सकते हैं.
First of all, our experience of historical record.
सबसे पहले जो ऐतिहासिक जो लेखा जोखा है उसे आप देख सकते हैं.
And then through our experience of practicing his teaching.
और फिर दूसरी बार जब उनकी शिक्षाओं के ऊपर हम आचरण करते हैं तब भी आप अनुभव ले सकते हैं.
Well, for instance, I've taught you Qigong.
तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको चिकुंग सिखाया.
I learned it from Master Lam Kam Chen.
और मैंने इसे लैम चैम कैन मास्टर से सीखा है.
None of you are saying, well, does he really exist?
तो आप में से किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि क्या वो वास्तव में मतलब अस्तित्व में है.
You know, say, what's the difference between Lam Kam Chen and Ishvara?
तो आप कहेंगे लैम चैम चैन और ईश्वर में फिर क्या फर्क है.
Well, I presume none of you are asking that.
तो मैं ग्राह्य धर रहा हूँ कि आप में से मुझे कोई ये नहीं पूछ रहे हैं.
Well, you know, I've said I've met him.
तो मैंने ये कहा है कि मैं उनसे मिला हूँ.
I've taught you what he's taught.
और मैंने आपको वो सिखाया जो उन्होंने मुझे सिखाया.
You've experienced that a bit for yourselves.
और आपने स्वयं ही कुछ हद तक उसका अनुभव भी लिया है.
So it doesn't occur to you to question.
और इसीलिए इस बारे में प्रश्न पूछना आपके लिए जरूरी नहीं था.
So in a way, in principle, it's no different with the Buddha.
तो तत्व के तौर पे देखा जाए तो बुद्ध के बारे में भी कोई अलग बात नहीं है.
Of course, whether the Buddha was the Buddha or not, that's more difficult for us to ascertain.
लेकिन बुद्ध वाकई में बुद्ध थे या नहीं थे ये समझना या बताना बेहद मुश्किल है.
We can definitely say that such and such a historical person lived.
तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, ऐसा ऐसा एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा करता था.
But was he really awakened or not? Well, that's difficult for us to say.
लेकिन वो सही में जागृत था या नहीं था ये हमारे लिए बताना बेहद मुश्किल है.
But it's interesting that the Buddha himself had something quite interesting to say about that.
लेकिन ये भी रोचक है कि बुद्ध को स्वयं के बारे में ही बताने के लिए ऐसी एक रोचक बात उनके पास थी.
He said, well, don't rely on my existence.
तो बुद्ध ये कहते हैं कि मेरे अस्तित्व में होने के ऊपर आप निर्भर मत रहिए.
He said, test my words as the goldsmith tests gold in the fire.
तो वो कहते हैं कि मेरे शब्दों का आप इस तरह से परीक्षण कीजिए जैसे कोई सुनार आग की भट्टी में सोने का या स्वर्ण का परीक्षण करता है.
Apparently, you know, a goldsmith just lights a flame and you can tell by the color of the metal whether it's gold or not.
तो आपको पता होगा कि जो स्वर्णकार है वो एक आग की बत्ती जलाता है और उसमें वो सोना रख के देखता है और फिर वो आग का जो रंग होता है उसी पर से वो बता देता है कि ये स्वर्ण है या नहीं है.
So he said, well, test my words like that.
तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे शब्दों का भी आप इसी भांति परीक्षण कीजिए.
Test them in your experience.
आप उसका अपने अनुभवों में परीक्षण कीजिए.
And my own experience is that if you do test them in experience, your confidence in the Buddha grows and grows and grows.
और मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि अगर आप बुद्ध के इन बातों का ऐसे परीक्षण करते हैं अपने अनुभवों में तो आपका उनके ऊपर विश्वास और मतलब बढ़ते जाता है.
But don't believe me. Try it for yourself.
तो मुझ पर भी विश्वास मत कीजिए, आप खुद ऐसा करके देखिए.
The Buddha said something else which is very interesting.
तो बुद्ध ने और एक बात कही जो बहुत रोचक है.
He said, whether I'm the Buddha or not, it doesn't matter.
तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
Whether I'm the Buddha or not, it's true that independence on this that arises.
तो मैं बुद्ध हूँ या नहीं हूँ ये अलग है, लेकिन इन परिस्थितियों के आधार पे इन बातों का निर्माण होता है.
Whether I'm the Buddha or not, things are arising independent on conditions.
तो भले मैं बुद्ध हूँ या नहीं हूँ चीजें परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होती
है. Whether I'm the Buddha or not, things are anicca.
मैं बुद्ध हूँ या नहीं हूँ चीजें फिर भी अनित्य होती हैं.
Whether I'm the Buddha or not, you cannot find an Atman.
भले मैं बुद्ध हूँ या नहीं हूँ फिर भी आप आत्मा को नहीं ढूंढ पाएंगे.
Whether I'm the Buddha or not, if you crave, you will suffer.
भले मैं बुद्ध हूँ या नहीं हूँ मगर फिर भी अगर आप तृष्णा रखते हैं तो आपको दुख होगा.
So if you don't find it easy to believe in the Buddha, कोई बात नहीं.
तो अगर आपको बुद्ध में विश्वास रखना इतना आसान नहीं लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता.
But try out what he's teaching.
लेकिन कम से कम वो करके देखने का प्रयास कीजिए जो वो आपको बता रहे हैं.
What was the inspiration for the Buddha and who was his master? तो बुद्ध के लिए प्रेरणा स्थान क्या था, बुद्ध के गुरु कौन थे?
Well, the Buddha's inspiration was suffering.
तो दुख ये बुद्ध का प्रेरणा स्थान था.
We don't really know the early life of the Buddha. There's a mythological life of the Buddha, but I don't find that very credible.
तो बुद्ध के आरंभिक जीवन के बारे में हमें इतना नहीं पता है. जो कुछ है वो मिथक है और वो इतने विश्वसनीय मुझे नहीं लगते.
What the Buddha himself says is that when he was a young man, he began to experience dissatisfaction.
तो बुद्ध स्वयं ऐसा कहते हैं कि जब वो युवा थे तब वो एक तरह की असंतुष्टि को महसूस कर रहे थे.
He began to find the life that he was leading empty and meaningless.
तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो जीवन वो जी रहे हैं वो रिक्त है और अर्थहीन है.
He began to find that the life that he was leading well, didn't give him happiness.
और वो ऐसा पा रहे थे कि जो जीवन वो जी रहे हैं उस जीवन में उन्हें आनंद नहीं आ रहा है.
Yes, he could get some pleasure, of course.
तो हाँ निश्चित ही उन्हें कुछ तो आनंद आ रहा होगा.
We're told that he was from a very wealthy background.
हमें बताया जाता है कि वो बहुत ही रईस ऐसे खानदान से थे.
Some people say he was a raja, but there's nothing in the scriptures to say that.
तो कुछ लोग कहते हैं कि वो राजा थे लेकिन मतलब ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है.
But he seems to have been from a well-to-do background.
लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि वो अच्छे खाते पीते घर के रहे होंगे.
So presumably he had, a pleasant life.
तो निश्चित ही उनकी एक ऐसी आरामदायक या सुखद ऐसा एक जीवन होगा.
But he found it wasn't enough.
लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं इतना पर्याप्त नहीं है.
He felt there had to be something more.
और उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं इससे अधिक कुछ तो भी है.
He felt a deep dissatisfaction.
और वो एक गहरी असंतुष्टि को महसूस कर रहे हैं.
You know the English author H.G. Wells?
तो आपको एक अंग्रेजी लेखक H.G. Wells के बारे में पता है क्या?
Some of you will have read some of his science fiction books, the early science fiction.
तो आप में से कुछ लोगों ने उनके जो मतलब काल्पनिक जो विज्ञान पे जो लिखी जाती है किताबें वो पढ़ी होगी.
I thought you'd all know them because they're always on sale at railway bookshops in India.
तो मुझे लगा कि आपको पता है क्योंकि भारत में कई दुकानों पे उनकी किताबें बिक्री के लिए होती हैं।
The War of the Worlds is the most famous one.
तो उनका War of the Worlds जो है किताब है वो बहुत प्रसिद्ध है।
Anyway, he wrote. By the way, he was importantly he was a founder of a political movement called the Fabian movement.
तो एक और रोचक बात है कि वो द फेबियन मूवमेंट करके एक जो मूवमेंट है उनके वो संस्थापक थे
And the Fabians founded the London School of Economics.
और ये जो फेबियन है लोग है इन्होंने ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का निर्माण किया था
And बाबा साहब of course studied at London School of Economics.
और बाबा साहब जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे
And in his thinking you can hear quite a bit of that sort of Fabian idea.
तो उनके जो विचार में है उनमें आप बहुत से उन फेबियन विचारों को सुन सकते हैं
Anyway, H.G. Wells wrote another book called A Short History of the World.
और H.G. Wells ने और एक किताब लिखी है कि दुनिया का एक संक्षेप में इतिहास
And he spoke about the Buddha.
और वहाँ उस किताब में उन्होंने बुद्ध के बारे में बात की है
And he spoke very, very, appreciatively of the Buddha.
और बहुत ही मतलब जिस तरह से सराहा जाता है वैसी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने बुद्ध के बारे में बात की है.
And he spoke of the Buddha's dissatisfaction.
और उस किताब में उन्होंने बुद्ध की असंतुष्टि का भी जिक्र किया है.
He spoke of the dissatisfaction of a fine mind that sought creative employment.
तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दिमाग की असंतुष्टि इस तरह से उसका वर्णन किया है कि जिसने अपने आप के लिए एक सृजक उद्योग का निर्माण किया था
The Buddha had powers, he had capacities which were not satisfied in his life.
तो बुद्ध के पास ऐसी क्षमताएं थी जिन क्षमताओं का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो जीवन संतुष्टि भरा नहीं लग सकता
So it's that sort of dissatisfaction.
तो इस तरह की जो असंतुष्टि है वो वैसी असंतुष्टि थी
When I think of this, I always think of a lion in a cage.
तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अक्सर मेरे दिमाग में ऐसा चित्र आता है जैसे कोई शेर एक पिंजरे में बंद हो
I remember going to the London Zoo when I was a child.
तो जब मैं छोटा था मुझे याद है कि मैं लंदन के एक चिड़ियाघर में गया था
And you'd see a lion in a cage.
और एक पिंजरे में मैंने एक शेर को देखा था
And this great big beautiful strong animal.
और एक बहुत ऐसा बड़ा विशाल और ये सुंदर ऐसा ये प्राणी था
And that animal was meant to wander over miles and miles of territory.
तो इस प्राणी का जो जन्म हुआ था कि बहुत से बड़े बड़े मतलब खुले स्थान पे घूमने के लिए
And there it was just in this little cage, huh?
और यहाँ पे सिर्फ उसके लिए एक छोटा सा पिंजरा था
And I remember the lion just walking up and down its cage with a sort of suppressed frustration.
तो मुझे याद है कि वो शेर जो है उस पिंजरे में यहाँ से वहाँ वहाँ चल रहा था और एक तरह की घोर निराशा उसके मन में थी
So that's the suffering that the Buddha experienced.
तो उस तरह का जो दुख है वो बुद्ध अनुभव कर रहे थे महसूस कर रहे थे
Those big questions he wanted answered.
और वहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल थे जिनका वो जवाब चाह रहे थे
energies that he wanted fulfilled.
तो ऐसी मतलब ऊर्जाएं थी क्षमताएं थी जो परिपूर्णता तक ले जाना वो चाह रहे थे
But, yes, he couldn't find a way to do so.
लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें कोई राह नहीं मिल रही थी
So he went forth, he went out into the jungle.
इसलिए वो निकल गए आगे निकल गए वो जंगल में चले गए
in the Shramanic tradition of the time.
और उस वक्त का जो श्रमण परंपरा थी उस परंपरा में वो गए
He just went out and gave up all his finery, just wore an old robe.
तो वो बाहर निकल गए और जो भी वो पुरानी उनकी वेशभूषा थी वो उन्होंने दे दी छोड़ दी
And he tried to find a way to answer his questions.
और फिर उन्होंने वो राह ढूंढने की का प्रयास किया जो उन्हें उनके सवालों के जवाब दे सकती
He tried going to various teachers.
उन्होंने अलग अलग शिक्षकों तक जाने का प्रयास किया
The name of two teachers.
हमें दो शिक्षकों के नाम बताए जाते हैं
I suppose you could say Upanishadic teachers.
और ये जो उनके गुरु थे वो उपनिषद परंपरा को मानने वाले थे
And they taught him their philosophy.
तो उनका जो तत्वज्ञान था उसको उन्होंने बताया
They even taught him how to achieve realization of that philosophy.
और उस मतलब जो भी तत्वज्ञान था उसका साक्षात्कार या अनुभव किस तरह से लेना है ये भी उन्हें सिखाया.
And eventually each of them recognized that he'd realized what they had realized.
और ऐसा करते करते दोनों ने भी यह अनुभव लिया कि जो उन्हें सिखाया गया है उसका उन्होंने अनुभव भी ले लिया.
And they offered him the leadership of their sect.
और फिर उनका जो संप्रदाय था उसका नेतृत्व भी उन्होंने उन्हें प्रदान किया.
But he knew it wasn't the final answer.
लेकिन वे जानते थे कि ये अंतिम जवाब नहीं है.
So he went away from them.
तो इसलिए वो उनसे भी दूर चले गए.
He tried all the usual Indian things.
तो उस समय की जो भारतीय बातें थी उन सबका उन्होंने प्रयोग किया.
Torturing his body.
अपने शरीर को यातनाएं दी.
Strange yogic practices.
बहुत सारे तरह की योगिक बातें उन्होंने की.
Starving himself.
भूखा रखा खुद को.
So that the Atman could achieve Kaivalyas.
तो ताकि उनकी आत्मा जो है वो कैवल्यस को प्राप्त कर सके.
He said that he was he practiced starving himself to such an extent that when he took hold of his belly, he touched his backbone.
तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को भूख से इस तरह से प्रताड़ित किया कि जब वो अपने पेट को छूते थे तो उनके पेट के हड्डी से उसका स्पर्श होता था.
And he said he was down to one grain of rice a day.
और उन्होंने अपना मतलब अन्न ग्रहण करना इतना कम किया कि वो चावल का सिर्फ दिन में एक ही दाना खाते थे.
And just to avoid any misunderstanding, he said, "Don't think that a grain of rice was any bigger then than it is now."
और वो कहते हैं कि कोई भी मतलब आपके मन में गलतफहमी निर्माण ना हो इसलिए कि चावल का एक दाना उस वक्त भी उसी आकार का था जैसा आज है.
So, but he realized that was only going to bring him one thing.
तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन तक एक चीज लेकर आएगा.
Death.
मृत्यु.
So he left that.
तो इसलिए उन्होंने वो भी छोड़ दिया.
So in other words, he couldn't find a teacher.
तो दूसरे शब्दों में वो उन्हें कोई शिक्षक नहीं मिला.
And this is a very important fact about him.
और उनके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा तथ्य है.
He had to find his own way.
तो उन्हें स्वयं ही अपनी राह ढूंढनी पड़ी.
Eventually he remembered a very strong experience of, I suppose, what we would call meditation.
और ऐसा करते हुए उन्हें जिसे हम ध्यान का अनुभव कहते हैं ऐसा एक अनुभव उन्हें याद आया.
And he realized that was the way to see things clearly.
और फिर उन्हें ऐसा लगा कि हाँ यही एक मार्ग है जिससे मैं चीजों को स्पष्टता से देख सकता हूँ.
So he sat down and on that basis he gained enlightenment.
तो इसलिए वो वहाँ पर बैठ गए और फिर उसके आधार पे उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया.
So he tried to find teachers, but he couldn't find any.
तो उन्होंने शिक्षक ढूंढने का प्रयास किया पर उन्हें नहीं मिले.
It's not that he wasn't willing to learn.
तो ऐसा नहीं था कि वो सीखने के लिए उतने मतलब तत्पर नहीं थे.
But he couldn't find anybody who could teach him.
लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उन्हें सिखा सकता था.
So this is a very important thing about a Buddha.
तो इसलिए बुद्ध के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है.
A Buddha is one who finds his way to enlightenment by himself.
तो बुद्ध ऐसे हैं जो उन्होंने बुद्धत्व तक की अपनी राह जो है खुद ही खोज निकाली.
So he's done the work that we probably couldn't do ourselves.
तो उन्होंने वो कार्य कर दिया जो शायद हम अपने आप नहीं कर सकते थे.
How does it help in business and the house?
How?
Well, there's no reason why Buddhism shouldn't help in business.
तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों बौद्ध धर्म व्यवसाय में आपकी मदद नहीं कर सकता.
In fact, I hope that it will help more in business than it has done up until now in India.
तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवसाय में अब तक जितनी मदद अन्य माध्यमों से हुई है उससे कई ज्यादा कर सकता है.
I saw recently, maybe 2 or 3 years ago, an issue of India Today that was about Dalit crore-patties.
तो मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले मैंने इंडिया टुडे का एक अंक पढ़ा था जो आज के मतलब दलित करोड़पतियों के बारे में था.
And several of them were Buddhists.
और उनमें से कई लोग तो बौद्ध थे.
I was very pleased about that.
तो ये जान के मुझे बेहद खुशी हुई थी.
I hope they were really Buddhists.
तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो वास्तव में बौद्ध हो,
नॉट जस्ट फ्लाइंग द बुद्धिस्ट फ्लैग,
या वो सिर्फ किसी झंडे के नीचे के बौद्ध ना हो।
होप दे रियली वेंट फॉर रेफ्यूज टू द बुद्ध धम्म एंड संघा,
और मैं आशा करता हूँ कि वो ऐसे हो कि जो सही में बुद्ध धम्म की शरण में गए हो।
आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं,
मैं नहीं जानता हूँ।
बट यस, आई थिंक दैट इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स will be very important.
तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई व्यवसाय करने वाले व्यक्ति है हो, बौद्ध हो, तो आप में एक प्रमुख बात होगी नीतिमत्ता या शील।
If you're a Buddhist and you're ethical, then people will trust you.
तो अगर आप नीतिमान है, बौद्ध है, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे।
Do you know Cadbury's chocolate?
तो आपको पता है कैडबरी चॉकलेट?
Yeah, that was a business started by a Christian family, the Cadbury family.
तो वो जो बिजनेस है कैडबरी का, वो एक क्रिश्चियन परिवार ने शुरू किया था, और वो परिवार मतलब कैडबरी परिवार।
And they were members of a Christian sect called Quakers.
तो एक क्रिश्चियन में एक संप्रदाय है क्वेकर्स, उस संप्रदाय से उनका संबंध।
You might have seen white oats, which is called Quaker oats.
तो आपने सफेद ओट देखे होंगे जिनको क्वेकर ओट कहा जाता है।
That was another Quaker business family.
तो वो दूसरे क्वेकर मतलब व्यवसाय परिवार।
And these Quakers, this particular branch of Christianity, they were very, very honest.
तो ये जो क्रिश्चियन संप्रदाय था, जो क्वेकर से संबंधित था, वो बहुत बहुत प्रामाणिक था।
And people knew that if they were Quakers, you could completely trust them.
और लोग ऐसा जानते थे कि अगर वो क्वेकर है तो आप उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं।
They knew that if you entered into business relations with them, they would serve you properly.
और वो लोग जानते थे कि अगर आप इनके साथ व्यावसायिक संबंध बनाते हैं तो वो सही में आपको अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे।
They knew that if they said something was so, it would be so.
तो वो जानते थे कि अगर वो कह रहे हैं ऐसा होगा या करेंगे तो वैसा करेंगे।
So honesty is a very, very good unique selling feature, USF.
तो जो प्रामाणिकता है ये बहुत ही मतलब ऐसा अच्छी ऐसी एक चीज को बेचने वाली बात है।
So I'm pretty sure that if you're a Buddhist business person, I'm sure that honesty will mean that people want to do business with you.
तो अगर आप बौद्ध हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रामाणिकता की बात है उस बात की वजह से लोग आपके साथ व्यवसाय करना चाहेंगे।
Because you know that India, trust is very difficult in India.
क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में किसी पे विश्वास करना, भरोसा करना बहुत मुश्किल है।
I recently read a book by an American thinker, Francis Fukuyama, somebody may have heard of him, called Trust.
तो मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है फ्रांसिस फुकुयामा इस लेखक की, जो कि विश्वास के ऊपर थी।
And it one of the things it did, it was it talked about trust in different cultures.
तो उस किताब में एक बात उन्होंने की है कि अलग-अलग संस्कृतियों में विश्वास का स्थान क्या, इस पे उसने उन्होंने चर्चा की।
And I'm afraid that India did not come out very well.
और मुझे खेद है कि इस किताब में भारत का नाम बहुत अच्छी तरह से नहीं आया है।
India is a low trust country.
तो भारत एक ऐसा देश था कि जिसपे विश्वास मतलब उतने मात्रा में नहीं किया जा सकता।
Countries like Sweden and Finland and Norway, they're very high trust.
तो फिनलैंड, स्वीडन, इस तरह के जो देश है वो भरोसे के बारे में बहुत ऊंचे स्थान पर थे।
One of the tests was you leave a 1,000 rupee note in the middle of the street.
तो एक उन्होंने मतलब परीक्षा ऐसे की थी कि 1,000 रुपए का नोट जो है वो रास्ते के बीचों बीच छोड़ दिया।
You put it in a wallet and you drop it in the street with a name and address on it and a 1,000 rupee note in it. Yeah?
तो उन्होंने ऐसा किया था कि एक बटुआ था, उस बटुए में 1,000 रुपए का नोट था, लेकिन उस बटुए में व्यक्ति का नाम और पता भी लिखा था और वो बटुआ उन्होंने रास्ते पे छोड़ दिया।
So what percentage of those wallets come back?
तो कितने प्रतिशत ये बटुए जो हैं वो वापस उस पत्ते पे पहुंच गए?
In Sweden, they almost all come back.
तो स्वीडन में सारे के सारे बटुए अपने पत्ते पे पहुंच गए।
In Britain, quite a lot come back, but only the wallet and not the money.
तो ब्रिटेन में भी बहुत सारे बटुए वापस आए, लेकिन सिर्फ बटुए वापस आए, पैसे वापस नहीं आए।
In India, I'm afraid even the wallet doesn't come back.
और भारत में बटुए भी वापस नहीं आए।
Well, I'm exaggerating, but that's the sort of test, huh?
हाँ मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ लेकिन इस तरह का परीक्षण हुआ.
So if people know you're a Buddhist and there is a Buddhist, you'd always hand that wallet back.
तो
well, they will trust you.
तो अगर आप बौद्ध हो और लोग अगर जानते हैं आप बौद्ध हो तो आप हमेशा वो बटुआ वापस करते हो और लोग जानते हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जाना.
And then if you're a Buddhist, well, you're practicing Maitri.
और अगर आप फिर बौद्ध हो तो आप मैत्री का आचरण करते हो.
So you behave well to those you employ.
तो आप उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हो जिनको आप नौकरी पे रखते हो.
You behave as a human being to other human beings.
तो आप दूसरे मनुष्यों के साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करते हो.
You know the habit here is anybody who's a servant or whatever, you don't really form any relationship with them.
तो यहाँ पे एक प्रकार की आदत है कि अगर कोई नौकर है तो आप उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाते.
You know, a waiter or somebody like that, you say, glass of water.
तो आप जानते हैं कोई मतलब वेटर वगैरह तो उन्हें सिर्फ आपको आप बताते हैं कि पानी लेकर
आवे.
तो जब मैं पहली बार भारत में आया था तो मुझे इस बात का बेहद धक्का लगा था.
We're used now because it's a much more egalitarian society to making eye contact with people who serve you, with people who help you in any way.
क्योंकि आज की जो दुनिया है वो इस तरह की दुनिया है कि आपके आपको अगर कोई भी कुछ भी तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है तो आप उसके साथ अपनी नजर से एक संपर्क स्थापित करते हैं.
And you're used to, if you do business with people, to having friendly, positive attitude to them.
और अगर आप किसी के साथ व्यवसाय भी कर रहे हैं तो एक मैत्रीपूर्ण या सकारात्मक आप उनके प्रति एक दृष्टिकोण रखते हैं.
And that's extremely good for business.
और व्यवसाय के लिए ये बहुत ही अच्छा है.
I'd rather do business with somebody who is friendly than with somebody who's just cold.
तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर है जो मैत्रीपूर्ण है तो उसके साथ मैं व्यवसाय करना पसंद करूंगा बजाय ऐसे व्यक्ति के साथ कि जो बहुत ही ठंडा है मतलब रुक्ष है भावनाओं से.
And the modern business world is very aware of this.
और आधुनिक जो व्यवसायी जगत है वो इस बारे में बेहद सजग है.
Then in the Buddha Dhamma we teach having a positive mental attitude.
तो बौद्ध धम्म में हम एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखने के विषय में भी बात करते हैं.
Keeping calm, keeping yourself from getting agitated.
तो अपने आप को शांत रखना किसी भी प्रकार का गुस्सा या इस तरह की भावना आने से अपने आप को दूर रखना.
Keeping mindful.
जागरूक रहना.
And that is again very good for business.
और फिर एक बात ये बात जो है व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी है.
If you're mindful, you don't get agitated, and then you don't forget things and do things badly.
तो अगर आप स्मृतिमान हैं, जागरूक हैं, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता या चीजों को आप बुरी तरह से नहीं करते.
So if you're practicing the Buddha Dhamma, you're becoming a really good, efficient, effective, positive human being.
तो अगर आप बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं तो आप बहुत ही प्रभावी ऐसे व्यक्ति बनते हैं.
And that will affect all your activity.
और आप जो भी फिर करते हैं उसके ऊपर उसका असर पड़ने वाला
है. If you're a business person, it will affect your business.
अगर आप एक व्यवसायी हैं तो वो आपके व्यवसाय पे भी उसका असर होगा.
If you're a doctor, it will affect your relations with your patients.
अगर आप मतलब डॉक्टर हैं तो आपके जो आपके मरीजों के साथ संबंध है उस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा.
If you're a bureaucrat, it will affect your bureaucracy.
तो अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं सरकार में है तो आप जिस तरह से काम करते हैं उस वो भी पद्धति इससे प्रभावित होगी.
And interestingly enough, this is being more and more noticed in the modern Western business world, and I'm sure it will be in India too.
मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक पाश्चिमात्य जो व्यवसायी जगत है उसमें इन चीजों का ध्यान आजकल रखा जा रहा है और कुछ समय बाद भारत में भी ऐसा ही होगा.
Just recently, the Economist magazine had an article on mindfulness in business.
तो इकोनॉमिस्ट ये जो पत्रिका निकलती है हाल ही में उन्होंने माइंडफुलनेस या जागरूक रहने के ऊपर एक लेख लिखा है.
The Economist is probably one of the best known news come business papers that there is.
तो इकोनॉमिस्ट ये जो वर्तमान पत्र है इसमें व्यवसाय और समाचार ऐसे दोनों का मिला जुला लेकिन बहुत ही अच्छा एक वर्तमान पत्र के रूप में जाना जाता है.
So they're talking about the benefits of mindfulness for business relations.
तो व्यवसायी संबंधों के लिए स्मृतिमान रहने के क्या फायदे हैं इसके विषय में वो बात कर रहे थे.
And a number of my friends in England are teaching mindfulness in various business quarters.
और इंग्लैंड में बहुत सारे मेरे ऐसे जो मित्र हैं जो अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में माइंडफुलनेस या स्मृतिमान जागरूक रहने की प्रक्रिया के बारे में सिखाते हैं.
One of our colleagues, one of our order member colleagues, is a professor at the London Business School.
तो हमारा एक साथी है और वो जो है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में सिखाता है.
And he's teaching top business executives from big multinational companies.
तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें वो सिखाता है.
And he's teaching them amongst other things mindfulness.
और अन्य सभी बातों के साथ ही वो उन्हें स्मृतिमान रहने के विषय में भी सिखाता है.
So I think that if you're a Buddhist, if you're genuinely a practicing Buddhist, it will make whatever you do better.
तो अगर आप बौद्ध हो और वास्तविक रूप में अगर आप बौद्ध हो तो जो भी आप कर रहे हैं उसे आपको वो अच्छा करने के लिए सहायता करेगा.
And I think it can especially affect business.
और निश्चित ही खास तौर पे व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव हो सकता है.
We have quite a big business ourselves in Cambridge in England.
तो कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में हमारा अपना भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है.
At the moment it's suffering from the general economic conditions in Britain.
तो ब्रिटेन में अभी जो सामान्य आर्थिक परिस्थितियां चल रही है उसके वो प्रभाव में है, मतलब बुरा चल रहा है.
But they found that being a Buddhist business was very good for business.
तो हमारा ऐसा अनुभव है कि एक बौद्ध व्यवसाय होना ये व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा था.
So yes, I think that I've said enough about why and how Buddhist practice is good for business.
तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों और कैसे बौद्ध आचरण व्यवसाय के लिए अच्छा है इसके बारे में मैं पर्याप्त कह चुका हूँ.
But I should also say that that business is good for Buddhism.
तो मैं ये लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बौद्ध धर्म के लिए व्यवसाय बहुत अच्छा है.
Because we need money.
क्योंकि हमें पैसों की आवश्यकता है.
If we spread the dhamma, we need money.
क्योंकि अगर हमें धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो हमें पैसों की आवश्यकता
And
है.
Money, as we know, it doesn't grow on trees.
और पैसा हम जानते हैं कि पेड़ों पर नहीं उगता है.
It doesn't fall from the sky.
और वो आसमान से भी नहीं टपकता है.
So yes, if we have Buddhist business people, they can contribute in that way to the spreading of the Dhamma.
तो निश्चित ही अगर हमारे पास बौद्ध व्यवसायी लोग हैं तो वो धम्म को इस तरह भी फैलाने के लिए मदद कर सकते हैं.
Baba Sahib at various times talked about, I think it was 5% and even 10% once, yeah. 20%. Anyway, a proportion. Yes, so I think business is not foreign to Buddhism.
तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवसाय ये बौद्ध धर्म के लिए ऐसे बाहर से आई हुई ऐसी कोई बात नहीं है.
You all know about Anathapindika.
आप सभी लोग अनाथपिंडिका के बारे में जानते हैं.
He gave the site which was the Buddha's sort of headquarters.
तो उन्होंने बुद्ध को वो जगह दान की थी जो एक तरह से बौद्ध प्रचार का मतलब केंद्र स्थान था.
Well, Anathapindika was a businessman. He was a banker.
तो अनाथपिंडिका जो है वो एक व्यवसायी थे, वो श्रेष्ठी थे.
And he was a very, very strong disciple of the Buddha.
और वो बुद्ध के बहुत ही मतलब प्रमुख ऐसे शिष्य थे.
And he had very deep insight into the truth of the Buddha's teaching.
और बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं उसके विषय में उन्हें बहुत ही सशक्त ऐसी अंतर्दृष्टि थी.
So I hope there are many Anathapindikas here.
तो मुझे ऐसा मतलब आशा करता हूँ कि आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे अनाथपिंडक होंगे.
But it might be good if at some point Buddhist business people got together to discuss what it meant to be a Buddhist and a business person.
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा भी किसी मौके पे एक बार होना चाहिए कि सभी बौद्ध व्यवसायी जो है वो इकट्ठा आए और वो इस विषय पे चर्चा करे कि एक बौद्ध व्यवसायी होने का अर्थ क्या होता है.
I would certainly be very interested in that myself.
और ऐसा कुछ अगर हो तो उसमें मतलब भाग लेने में मैं खुद भी बहुत मतलब लेना चाहूंगा.
But you're business people, so you're quite capable of organizing that, and then you can invite me.
तो आप क्योंकि व्यवसायी लोग हो तो आप ऐसा करने में सक्षम हो और फिर आप मुझे वहाँ पे निमंत्रित कर सकते हो.
बस. Your hands are empty. Questionless.
Actually, this the first point you said about the trust and Buddhism.
Ah.
So this was one of the reason why we started Excellence.
Ah, yes. Yeah, yeah.
Because people will start trusting our professionals because they are Buddhist.
Yeah, yeah.
Maharashtra mein bahut zyada
That's dangerous. Dangerous for me.
तो वो बताना मेरे लिए खतरनाक है.
I don't mean all Buddhists in Maharashtra. I mean that sometimes you find in Maharashtra some Buddhists who can be fundamentalists.
तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि महाराष्ट्र के सारे ही बौद्ध जो है फंडामेंटलिस्ट है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ बौद्ध कभी कभी मतलब फंडामेंटलिस्ट जैसा बिहेव करते हैं.
So please forgive me if I've offended you.
तो मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया.
There are too many Maharashtrian Buddhists here for me to say that.
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महाराष्ट्रियन बौद्ध हैं और मैं ऐसा नहीं कह सकता.
Yeah, but
So he said, I didn't understand why you felt in that manner that the Maharashtrian Buddhists are fundamentalists.
I didn't say that. I said some are. There is a form of Maharashtrian fundamentalism. Well, it's where you can't hear anybody else's point of view.
तो ऐसा इसलिए मतलब मैंने सभी के बारे में नहीं कहा, मैंने कुछ ही लोगों के बारे में कहा, वो भी कुछ ही वक्त, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी और का जो दृष्टिकोण है या बात है वो सुनना ही नहीं चाहते.
Where you're right, everybody else is wrong.
और क्योंकि जब आप सही होते हो तो बाकी सब गलत होते हैं.
And yes, it becomes very, very aggressive, very combative.
और आप बहुत मतलब ये हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, आग बबूला हो जाते हो और फिर लड़ने झगड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है.
Fortunately, it's a very small element.
लेकिन सदैव से ये सब बहुत ही इसका प्रमाण बहुत थोड़ा है.
But it's there in every religion.
लेकिन ऐसा हर धर्म में है.
And yes, you get it everywhere.
और आपको ये हर स्थान पे आप इसको पा सकते हैं.
But the essence of what I'm talking about is where you take certain teachings, certain approaches, certain attitudes, and you wave them as a flag. And you hit other people on the head with them.
लेकिन ये ऐसी बात होती है जहाँ पे आप कुछ मूल्य है, कुछ तत्व है, उनको आप लेते हैं एक झंडे के नीचे और फिर आप बस उसे लहराते रहते हैं, लहराना शुरू करते हैं.
Okay.
Sir, yesterday I see your website.
Uh-huh.
And in that website I see the work Jai Bhim Network in Hungary.
Yeah.
I would like to know about that work.
Hindi में?
कल मैंने सर की वेबसाइट देखी है. तो उस वेबसाइट में एक वर्क लिखा हुआ है जय भीम नेटवर्क इन हंगेरी. सर ने योग में काफी काम किया है, उसमें से एक काम जय भीम नेटवर्क है. तो मैं उत्सुक हूँ वो चीज जानने के लिए.
Well, that's a work I'm associated with.
तो वो एक काम है जिसके साथ मैं संबंधित हूँ.
You know that a thousand years ago or so, some Indian people came into Europe.
तो आप जानते होंगे कई एक हजार साल पहले कुछ भारतीय लोग जो है यूरोप में आए थे.
And they're known as gypsies.
और उन्हें जिप्सी कहा जाता है.
That's not a term they always like. Yeah?
और ये ऐसा शब्द है जो वो पसंद नहीं करते.
Or they're often called Roma.
या कभी कभी उन्हें रोमा भी कहा जाता है.
And they speak a language that is a quite close relation of Hindi.
तो वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो हिंदी के काफी करीब है.
There are about 60 lakh in Europe.
और लगभग 60 लाख ऐसे लोग हैं वो यूरोप में.
And in some countries in Central Europe, they're quite a substantial number.
और यूरोप के कुछ केंद्रीय स्थानों में वो और भी मात्रा में वहाँ पे है.
And these people, of course, they have darker skin.
और उन ये जो लोग हैं उनकी त्वचा जो है वो थोड़ी सी डार्क है, मतलब
they look like you.
काले सांवले हैं और हमारी तरह वो दिखाई देते हैं.
And yes, they definitely look different to people like me.
और यूरोप के या इनके जैसे जो लोग हैं उनसे वो काफी अलग दिखते हैं.
For instance, I showed once I did a slideshow at a gypsy center in Hungary.
तो एक बार हंगरी में जो एक जिप्सी सेंटर है वहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड शो दिखाया था.
And I was showing our work here in India.
और भारत में हमारा जो काम है वो मैं उन्हें दिखा रहा था.
And after about 15 minutes, one old gypsy got up and said, I thought you were going to show us pictures of India. Why are you showing us pictures of Hungary?
तो वहां पे 15 मिनट के बाद एक जो वृद्ध व्यक्ति थे जिप्सी वो उठ के खड़े हो गए और मुझे लगा वो कहने लगे मुझे लगा कि आप तो भारत के चित्र दिखाने वाले हैं आप हंगरी के ही चित्र क्यों दिखा रहे हैं
because he saw the same faces, the same environment.
तो क्योंकि उन्हें वही सब चेहरे दिखाई दे रहे थे और वही सब वातावरण दिखाई दे रहा
था but I'm ashamed to say as a white European that those gypsy people are not treated well.
और एक सफेद अंग्रेज होने के या यूरोपियन होने के नाते मैं ये बहुत शर्मिंदगी के साथ कहता हूँ कि उनके साथ वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं होता है.
It's not so bad in Britain, but in Central Europe it's very bad indeed.
तो ब्रिटेन में इतना बुरा नहीं है लेकिन जो केंद्रीय यूरोप है वहाँ पे बहुत ही उनके साथ बुरा बर्ताव होता है.
So Hungary is a country of just 1 crore people.
तो हंगरी सिर्फ 1 करोड़ आबादी वाला ही देश है
and 6% of people in that country are of Roma.
और वहाँ के जो 6% लोग हैं वो अरोमा हैं.
And the poorest, the most excluded people.
और वो वहाँ के सबसे गरीब और मतलब जिन्हें कहते हैं ना बाहर फेंक दिया है ऐसे वो लोग हैं.
So for instance you'll get a village.
तो उदाहरण के तौर पे आपको एक गांव मिलेगा.
And that village will be, well it's not Britain but it's quite well to do.
तो वो जो ये ब्रिटेन नहीं है लेकिन अच्छा खासा जो शहर होता है ऐसा ये शहर है.
Go to the edge of the village.
तो जब आप इस शहर के अंत तक पहुंचते हैं.
The street lights stop.
तो रास्ता वहां पे जैसे खत्म हो जाता है.
The roads are not paved.
और जो बांधे हुए जो रास्ते होते हैं कंस्ट्रक्ट किए हुए वो रास्ते खत्म हो जाते हैं.
There's no running water in the houses.
और घर जो है वहाँ पे नलों का पानी नहीं है.
So you're moving from the white Hungarian part to the gypsy part.
तो ये वो जगह है जहाँ से आप सफेद हंगेरी के निवासियों के भाग से जो काले हंगेरियन हैं उनके भाग में आप प्रवेश कर रहे हैं.
Does that remind you of anything in India?
तो आपको भारत में ऐसा कुछ याद आ रहा है?
So a friend of mine, or somebody who became a friend of mine, he was from a white Hungarian background.
तो मेरा जो ये मित्र था या उससे मेरी मित्रता हुई थी वो एक सफेद हंगेरियन था.
But he became a Buddhist.
लेकिन वो बौद्ध बन गया.
In communist times he became a Buddhist.
तो जब कम्युनिस्ट लोगों का दौर चल रहा था उस वक्त वो बौद्ध बना.
And he decided he wanted to work to help those gypsy people help themselves.
तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं इन जिप्सी लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि वो खुद की मदद करें.
And he saw the Buddha Dharma as a way of helping them.
और उन्हें ऐसा लगा कि इनकी मदद करने के लिए बौद्ध धर्म ये एक मार्ग है.
And one day he came across a book about बाबा साहेब.
और एक दिन उनके मतलब उन्हें बाबा साहब की किताब मिल गई.
And he realized this was exactly applicable to the people he was working with.
और फिर उन्होंने ऐसे लगा कि ये जो मतलब बाबा साहब ने किया यही करके हंगेरियन लोगों की मदद की जा सकती है.
And well, I discovered about them and I made contact with them.
तो मुझे उनके बारे में पता चला और फिर मैंने उनके साथ संपर्क किया.
And I brought some of the leaders here to India.
और उनके जो कुछ नेता थे उन्हें मैं भारत लेकर आया था.
And they came to a big retreat we had in Nagpur in 2006.
तो 2006 में नागपुर में एक बहुत बड़ा सा शिविर हुआ था वहाँ पे वो आए थे.
And one of the leaders there said that for the first time he saw people like him who were lifting themselves up.
तो उसने कहा कि जीवन में पहली बार मैंने मेरे ही जैसे लोगों को देखा जो अपने आप का मतलब विकास करने का प्रयास कर रहे थे.
They weren't depending on other people.
वो किन्हीं दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं थे.
Because of the Buddha Dhamma, they were making their own lives better.
और सिर्फ बुद्ध धम्म की वजह से वो अपने जीवन को और अच्छा बना रहे थे.
And he said it was for him just a completely new experience.
और वो कह रहा था कि उसके अपने लिए वो बहुत ही अलग किस्म का एक अनुभव था.
So they went back to Hungary and they'd already been doing educational work.
तो वो हंगरी में वापस गए और वो पहले से ही कुछ शिक्षा संबंधित कार्य कर रहे थे.
And they started an organization called the Jai Bhim Network.
और फिर वहाँ पे उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसे वो जय भीम नेटवर्क कहते हैं.
They started the Dr. Ambedkar High School.
और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर हाई स्कूल का निर्माण किया.
It's especially for gypsy youngsters who've not been able to do well in their school system.
तो ये खास करके उन जिप्सी बच्चों के लिए है जो उनके जो सामान्य जो विद्यालय है उन्होंने उसमें वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते
because there's prejudice against them in the schools.
क्योंकि स्कूल में उनके साथ भेदभाव वाला बर्ताव किया जाता है मतलब पूर्वाग्रह रखते हुए बर्ताव किया जाता
they're not given proper tuition.
तो उन्हें अच्छे से सिखाया नहीं जाता शिक्षा नहीं दी
And जाती they come from very poor, very, very difficult circumstances, so they don't have the basis for learning.
तो वो बहुत ही गरीब ऐसी पार्श्वभूमि से आती है इसलिए शिक्षा के हासिल करने के लिए जो मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है वो उनके पास नहीं होती है
so that they've been working with these people.
तो इसलिए वो लोग इन लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं
in Hungary there's only one or two gypsy doctors.
तो हंगरी में सिर्फ एक या दो ही जिप्सी डॉक्टर हैं।
There's only one or two gypsy lawyers.
एक या दो ही जिप्सी वकील हैं।
Very few teachers.
बहुत ही कम शिक्षक हैं।
So they get tremendous inspiration from what has happened in Maharashtra.
तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उससे वो काफी प्रेरणा लेते हैं।
I've been insulting Maharashtra, but now I'm going to praise Maharashtra.
अब तक मैं महाराष्ट्र का अपमान कर रहा था लेकिन मैं अभी उसकी प्रशंसा करूंगा।
What's been achieved because of the Buddha Dhamma?
तो बुद्ध धम्म की वजह से यहाँ क्या कुछ हासिल किया
गया? Many of you are now professionals. Those of you who come from that background, you're professionals.
तो आप जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग उस पार्श्वभूमि से आए हैं लेकिन अभी आप व्यवसायिक हैं।
Because of Baba Sahib, because of the Buddha Dhamma, you've made something of your life.
तो बाबा साहब की वजह से बौद्ध धम्म की वजह से आपने आपने अपने जीवन में कुछ तो अच्छा किया
So they think, well, if you can do it here, we can do it there.
तो वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ अगर आप यहाँ कर सकते हैं तो हम वहाँ भी कर सकते हैं
So Maitrivir and I have been working with them.
तो मैत्रीवीर और मैं वहाँ पे उनके साथ काम करता हूँ
And we hope that that association will deepen more and more.
और हम ऐसी आशा करते हैं कि ये जो हमारा संबंध है और भी गहरा गहरा होता जाएगा
They really like Indians visiting them.
तो वो उन्हें बहुत पसंद है कि कुछ भारतीय लोग उन्हें आकर वहाँ मिले
I don't know why he's not been coming. We've been trying to get him for a long time.
तो मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते हम बहुत समय से उन्हें वहाँ ले जाने की कोशिश
It gives them a lot of confidence to see successful people coming from the same background as they came from.
तो जब कोई यशस्वी व्यक्ति उसी पार्श्वभूमि से उनके पास आता है तो उन्हें उससे काफी प्रेरणा हासिल होती है
And yes, they're becoming Buddhists.
और हाँ वो बौद्ध बन रहे हैं
Because they see that Buddhism gives them so much more than the religion that they were belonging to before.
क्योंकि वो जानते हैं कि बौद्ध धर्म उन्हें बहुत कुछ ऐसा दे रहा है उस धर्म की तुलना में जिस धर्म से वो पहले संबंधित थे
Until the last two or three years, there were no gypsy priests.
तो पिछले दो या तीन साल तक कोई भी जिप्सी मतलब पुजारी या पादरी नहीं था वहाँ पे
But, we asked them to take the lead themselves,
तो हमने उन्हें ऐसे कहा कि क्यों नहीं आप स्वयं ही मतलब इसका आरंभ करते नेतृत्व करते
We say it's up to each person to be an individual and to make their own effort.
तो हमने उन्हें कहा कि ये हर व्यक्ति के अपने ऊपर है कि वो मतलब आगे बढ़े और एक व्यक्ति बनकर आगे बढ़े
To me, this is very, very inspiring.
और मेरे लिए ये बहुत बहुत प्रेरणादायी है
Because I've seen with my own eyes the application of Baba Sahib's approach to the Buddha Dhamma in a completely different situation.
मेरे लिए ये प्रेरणादायी है क्योंकि मैंने बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है उसे लागू होते हुए देखा है एकदम ही विभिन्न ऐसी परिस्थिति में
And I'm sure that can be applicable to other people who suffer that sort of prejudice and oppression everywhere in the world.
और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी भी हिस्से में इस तरह का मतलब पूर्वाग्रह और शोषण का अगर कोई सामना करता है तो वहाँ भी इससे फर्क पड़ सकता है
Of course, it's applicable to everybody.
और निश्चित ही ये हर किसी को मतलब लागू किया जा सकता
But yes, one can see the way in which those who are marginalized take responsibility for themselves.
तो निश्चित ही जो मतलब बहुत ही मतलब छोटे तबके से आते हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखना चाहिए
That's what the Buddha Dhamma teaches us.
और यही जो है बौद्ध धर्म हमें सिखाता है
It's in our hands.
ये हमारे हाथ में है
Not in some other community.
किसी दूसरे मतलब समाज के हाथ में नहीं है
Not in Delhi.
दिल्ली में नहीं है
Not in the stars.
सितारों में नहीं है
It's in our hands.
ये हमारे हाथ में है
And that it doesn't matter who we are, where we come from, what our background, it's the same for every one of us.
तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन है कहाँ से आते हैं हमारी पार्श्वभूमि क्या है हम सबके लिए यही है
So we're hoping that there's going to be a film made by an Austrian filmmaker. Maitrevi has been trying to arrange this. He's coming to India, we hope, at the end of the year. to make a film about the connection between these two this work in these two places.
तो एक फिल्म है जिसका निर्माण हो रहा है जिसमें मैतीवीर नागार्जुन भी सहयोग कर रहे एक ऑस्ट्रियन जो है फिल्म निर्माता है उनके साथ और हम आशा कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर तक के अंत तक वो भारत में प्रदर्शित हो
But you can find out more from their own website which is called jaibheem.hu H-U for Hungary
तो उस फिल्म में मतलब भारत का और उन जिप्सियों का मतलब संबंध बताया गया है लेकिन इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पे
jaibheem.hu
इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं
Thanks for your talk, Sundari. I just want to ask you last question about, as you are aware about racism in the European as a Buddhist, how we can respond? Especially Asians people are struggling with this.
Especially what? Sorry?
Asians people, you know, people from Asia.
Hindi?
No.
You said in Hindi, yeah. Not everybody can understand.
I need a switch.
Reincarnation of Bharti.
Yes. Bharti's system is down. yes, well, it prejudices everywhere in the world.
तो पूर्वधारणाएं दुनिया में सभी जगह है.
And in Europe, there certainly is, in especially in Britain, there certainly is prejudice on the basis of race, of nation, and so on.
और निश्चित रूप से ब्रिटेन में भी यह पूर्वधारणा है राष्ट्र के आधार पर और आपके रंग के आधार पर
And of course, yes, Asian people, India, Pakistani, Bangladeshi will experience that.
और जो एशिया से लोग आते हैं जो भारतीय है पाकिस्तानी है यह सब लोग इसका अनुभव करते हैं
Probably people who are from Africa or from the Caribbean will experience it more intensely.
लेकिन जो लोग कैरेबियन या अफ्रीका से आते हैं वो लोग उसे अधिक गहराई से महसूस करते हैं
But it's a very unpleasant feature of human character.
लेकिन मानव के यानी मानव जीवन की यह बहुत ही यानी घिनौने ऐसे लक्षण है
And most cultures have some sort of prejudice, some sort of hierarchical attitudes, sir.
और सभी संस्कृतियों में इस प्रकार के ऊंच नीच का जो नजरिया होता है वह होता है
So, and of course, women suffer from that everywhere in the world.
और जो महिलाएं हैं वह दुनिया में हर जगह इसका अनुभव करते हैं
So, our duty as Buddhists is to break down those barriers.
तो बौद्ध होने के नाते हमारा कर्तव्य यह है कि इन धारणाओं को हमने तोड़ना चाहिए
And so to try to make sure that we reach people from every different background
और हमने इस बात का भरोसा लेना चाहिए कि दुनिया के हर जगह हम पहुंचे
and in many of our centers you do have quite a wide range of cultures represented
और दुनिया में ऐसे कई तरीके के भिन्न-भिन्न संस्कृतियां हैं जो ऐसी फैली हुई है
so for instance our biggest center anywhere in the world is the London Buddhist Center
तो दुनिया का सबसे बड़ा जो केंद्र है इस आंदोलन का वह है जो लंदन में स्थित है उसे लंदन बुद्धिस्ट सेंटर कहते हैं
and the chair of that center the leader of that center is of Indian origin
और वहां के जो नेता है जो मुख्य व्यक्ति है उस केंद्र के वह भारतीय है
he's as English as I am but he's as dark skinned as you are
तो वो मेरे जैसे ही अंग्रेजी है पेश आने में लेकिन उनके चमड़ी का जो रंग है वह डार्क है
डार्क है डार्क हिंदी शब्द डार्क you see what I mean? He's of an Asian background, huh?
तो वो एशिया से आए हुए हैं.
And London Buddhist Center, because London is so multicultural now, many many different people from different backgrounds there.
तो लंदन अभी बहुत ही भिन्न-भिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ है, अलग-अलग दुनिया के जगह से लोग वहाँ हैं.
So in our centers, we try as much as we can. To overcome all these prejudices.
तो हमारे केंद्र में हम यह पूरा प्रयास करते हैं कि यह सभी पूर्वधारणाओं के ऊपर हम लोग उठे
and to work with them in people's minds.
और लोगों के मन के ऊपर ऐसे कार्य हो
When I say peoples, I mean our minds.
तो जब मैं लोक कहता हूँ इसका अर्थ यह है कि हमारे मन पे कार्य होना चाहिए.
And well, we've worked quite hard in various ways, but there's always more work.
तो भिन्न भिन्न प्रकार से हम काफी कठिन परिश्रम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारा काम करना बाकी है.
Anyway, I think I better finish there. I've worn out one translator. I don't want to wear out another.
तो मैंने एक मेरे भाषण यानी जो ट्रांसलेटर थे उनको रिटायर कर दिया. अब दूसरे को मैं रिटायर नहीं करना चाहता.
But perhaps not retire, worn out. That's a different matter. Worn out, exhausted.
थका दिया मैं.
You be quiet.
दूसरे को मैं थकाना नहीं चाहता.
But let me just make a final point out of what I was just asked.
तो जो कुछ भी मुझे पूछा गया है उसका एक अंतिम जो मुद्दा है वह भी मैं कहना चाहता हूँ.
We should really try in our activities together, on our retreats, in our centers, in anything we do together, to overcome the barriers and boundaries between people.
तो जब कभी भी आप यह कार्य करते हैं या किसी केंद्र में यह कार्य आप फैलाना चाहते हैं, तो जो भी बाधा है दो लोगों के बीच में या दो समूहों के बीच में आती है उसे तोड़िए.
We should try to make every situation like this situation a land of liberty, equality and fraternity.
तो हर परिस्थिति को ऐसी परिस्थिति बनाइए जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के ऊपर आधारित हो.
And don't forget that one of the biggest inequalities in India is that between men and women.
और सबसे बड़ी जो असमानता है भारत में हम अभी भी महसूस करते हैं वह है स्त्री और पुरुष की.
And we should work hard to overcome that barrier so that there's real genuine equality.
तो हम यह जो रुकावट है इसके ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए जहां में वाकई में या वास्तविक समानता हो.
And equality always begins at home.
और जो समानता है वह आपके घर से ही शुरू होती है.
There's no good getting on the platform, you know, and shouting at your political meeting, liberty, equality, fraternity.
तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है या वह अर्थहीन है जब आप बड़े बड़े मंच पर चढ़ते हैं और समता, स्वतंत्रता, बंधुता के नारे देते हैं.
And then going home and saying to your wife, get my supper.
और फिर आप घर जाते हैं, आप बीवी को ऐसा आदेश देते हैं कि अभी मेरा खाना लगा.
Or worse, I'm afraid. Worse.
और उससे भी भयानक चीजें फिर होती है.
So as Buddhists, we should practice liberty, equality and fraternity in the first place, which is at home.
तो बौद्ध होने के नाते समता, स्वतंत्रता और बंधुता का आचरण हमने करना चाहिए और उसकी पहले जगह जो होगी वह हमारा अपना घर होगा.
I have a suspicion that in India we still don't have enough genuine Buddhist marriages.
मुझे अभी भी इस बात की शंका है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में जो वाकई बौद्ध विवाह होते हैं वह नहीं होते.
Most of the marriages of Buddhists are actually Hindu marriages.
तो जितने भी जो बौद्ध विवाह हम कहलाते हैं वह हिंदू विवाह ही होते हैं.
I don't mean Hindu by custom.
तो हिंदू में रूढ़ी परंपराओं के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ.
Yes, the refuges and precepts were chanted at the marriage and so on. I know.
निश्चित रूप से जब आप विवाह पद्धति को करते हैं तो वह आप त्रिशरण पंचशील कहते हैं.
I mean the structure of family life.
मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि आपके परिवार की जो रचना है उसके प्रति.
It's dangerous for me because there are more men here than women, but you're protecting me.
तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ ज्यादा पुरुष और कम महिलाएं, लेकिन महिलाएं मेरा संरक्षण करेगी.
But yes, I think it's very, very important that we practice what we preach.
तो यह महत्वपूर्ण है कि जो हमारे कथनी में है वह हमारे करनी में होना चाहिए.
And in our domestic lives is liberty, equality, fraternity.
तो हमारे घरगुती जीवन में भी हमने समता, स्वतंत्रता और बंधुता से ही जीना चाहिए.
And in our practice together on retreat in the center, there's liberty, equality, fraternity.
और जब आप अपने केंद्रों पे काम करते हो या अपना स्वयं का आप काम करते हो वहाँ पे भी आप समता, स्वतंत्रता और बंधुता से काम कीजिए.
The Buddha said that when you come into the Sangha, you leave behind your old caste identity.
बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जब आप संघ में प्रवेश करते हैं तब आपकी पुरानी जो जाति मूलक जो पहचान है उसे आप छोड़ देते हैं.
Just as the Ganga, the Krishna, the Godavari, when they come into the ocean, they lose their separate identities.
तो यह जो गंगा है, कृष्णा है, गोदावरी, यह सब नदियां जब समुन्दर में या सागर में मिल जाती है तो उनकी अपनी पहचान विलीन हो जाती है.
So when we come on a retreat like this, we leave behind our background.
तो जैसे हम इस शिविरों में जब आते हैं तो हमारी जो पृष्ठभूमि की जो पहचान है उस पहचान को हमने छोड़ देना चाहिए.
We leave behind our old identity.
तो वह जो पुरानी हमारी पहचान है उसे हमने छोड़ना चाहिए.
Thank you.